आज के कार्यक्रम में एक नाट्य रूपांतर के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं एक गंभीर विषय पर। जी हाँ, ये विषय है बेरोजगारी। आज हम जिस समय का सामना कर रहे हैं, ये समय परेशानियों से भरा जरूर है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपना विवेक खो बैठें या ऐसे रास्तों को अपना लें जो ना तो हमारे लिए सही है और ना ही मानव समाज के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के चलते हमारा देश आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहा है और इसी कारण बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं। लाखों लोगों की रोजी रोटी चली गई है, लाखों लोग घरों में रहते हुए भी सड़क पर आ गए हैं। कुछ लोग तो आधी तनख्वाह पर काम कर रहे हैं तो कुछ एक तिहाई तनख्वाह से ही काम चला रहे हैं। तनख्वाह घट गई है पर खर्चे तो उतने ही हैं। ऐसे में क्या करें दोस्तों, आज परेशानियों से हार कर, आज बेरोजगारी से हार कर हमारे युवा गलत कदम उठा रहे हैं। मानव तस्करी, बाल श्रम, घरेलू हिंसाओं में इजाफा बेरोजगारी का ही परिणाम बन चुका है। आज बेरोजगारी के चलते लोग उन रास्तों पर चल रहे हैं जो गैर कानूनी है, गलत है, अपराध से भरे हुए हैं। बेगुनाहों की खुशियों, उनके सपनों, उनके बचपन, उनके जीवन को कुचल कर बनाए गए हैं दोस्तों। पर याद रखिए, उन रास्तों का अंत केवल और केवल अंधकार है, दंड है और कुछ भी नहीं। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं एक ऐसी ही कहानी जो हमें इन बातों से रूबरू कराती है।
बेटा विवेक, अब क्या होगा?
होगा क्या पिताजी? अब तो लगता है कि इस महामारी की वजह से हम लोग सड़क पर आ जाएंगे।
अरे ऐसा मत कहो बेटा, भगवान सब अच्छा करेगा।
अब क्या अच्छा होगा पिताजी, अभी अभी ऑफिस से फोन आया है, अब सबको घर से ही काम करना होगा और सैलरी भी आधी दे रहे हैं।
कोई बात नहीं बेटा, जो मिल रहा है उसमें ही सब्र कर लो कि पता नहीं कब क्या हो जाए। वैसे भी घर से ही काम करना होगा, इसमें तुम्हारा भी तो भला है।
ऐसी भलाई से तो हम दूर ही अच्छे हैं पिताजी।
चलो अब ज्यादा परेशान मत हो, शांत हो जाओ और धीरज से काम लो।
ठीक है, मैं जाकर फाइल का काम पूरा करता हूँ। पापा तब तक आप भी आराम कर लीजिए।
घर से काम करते करते विवेक को 2 महीने बीत गए। काम ज्यादा भी होता था और घर के शोर शराबे में काम करना बेहद मुश्किल होता था। विवेक अब चिड़चिड़ा सा भी रहने लगा था। कभी कभी तो वो इतना परेशान हो जाता कि अपने पिता पर चिल्ला भी जाता।
बेटा विवेक, आखिर बात क्या है? मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ कि तुम बहुत परेशान रहने लगे हो। अरे भाई, मैं तुम्हारा पिता हूँ और दोस्त भी, फिर मुझसे क्या छिपाना बेटा?
क्या बताऊं पापा, मेरे ऑफिस से काफी लोगों को काम से निकाला जा चुका है।
क्या, ये क्या कह रहे हो बेटा?
हाँ पापा, और अब उन लोगों के हिस्से का काम हम ही लोगों को करना पड़ेगा। काम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बस पूछो मत, तनख्वाह आधी और काम 2 लोगों का।
बिगड़ते हालातों से विवेक की हिम्मत टूटने लगी थी। फिर कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि उसकी जिंदगी ही पलट गई।
अरे रमेश, कहीं नौकरी वोकरी मिली क्या?
हाँ यार, काम तो मिल गया है, पैसे भी ज्यादा मिलते हैं। अब तो सोचता हूँ कि ऑफिस वालों ने पहले ही निकाल दिया होता तो अच्छा होता।
अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है, पर काम क्या करना होता है?
काम तो कुछ करना ही नहीं, बस एक आध छोटा मोटा काम करना होता है और उसके पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं।
अच्छा ठीक है रमेश, मैं फोन रखता हूँ, अभी थोड़ा बिजी हूँ, चल बाय।
विवेक को भी ऑफिस से फोन आया और उसकी नौकरी भी चली गई।
अब इसका क्या फायदा पापा, मैं तो बेरोजगार हो गया हूँ ना। इतनी मेहनत, इतनी कोशिशों के बाद एक नौकरी मिली थी, वो भी हाथ से चली गई।
परेशान मत हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा, ऐसे हार माना नहीं करते। अरे तेरे चाचा के बेटे की भी तो नौकरी चली गई है ना, पर उसने अब घर से एक और नया काम ढूंढ लिया है।
ओहो पिताजी, आप नहीं समझेंगे, इतना आसान नहीं है। मैं जाता हूँ, जरा कुछ काम है मुझे।
विवेक भाई, कैसे आना हुआ?
कुछ नहीं यार, तुझे तो पता ही है कि मेरी नौकरी चली गई है, यार मुझे भी अपने साथ कोई काम पर लगा लेना।
बस इतनी सी बात? चल आज ही मैं तेरे लिए बात करता हूँ।
पर काम क्या करना है रमेश?
अरे तू घबराता क्यों है यार?
बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे विवेक भी उस दलदल में उतर गया।
तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया रमेश?
अरे अभी बताता हूँ, आज तेरे काम का पहला दिन है, बस मैं तुझे समझाना चाहता हूँ कि काम कैसे करना है।
अच्छा ठीक है।
देख विवेक, वो बच्चा दिख रहा है ना तुझे, बस उसी को मालिक के पास पहुँचाना है, काम के हमें ढेरों पैसे मिलेंगे।
क्या? पर ये तो गैर कानूनी है, गलत है।
तेरी मर्जी भाई, अब तुझे पैसे चाहिए या नहीं?
हाँ यार पैसे तो चाहिए।
तो बस फिर जो मैं कहता हूँ उसे चुपचाप सुन, समझ और उसको फॉलो कर, ओके? नहीं तो फिर सड़कों पर भीख ही मांगनी पड़ेगी तुझे।
नहीं नहीं रमेश, मैं इस काम को करूँगा।
विवेक और रमेश ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया। वे सारे दोस्त जो कंपनी से निकाले गए थे, ये मिलकर छोटे छोटे मासूम बच्चों को अगवा करने लगे। लालच देकर उन्हें फुसलाते, फिर अगवा कर ले जाते। उन बच्चों को अलग अलग जगहों पर भेजा जाता, उनका शारीरिक व मानसिक शोषण होता।
ये लीजिए पिताजी इस हफ्ते की तनख्वाह।
अरे विवेक बेटा, ये कैसी नौकरी है, यहाँ हर हफ्ते सैलरी मिलती है?
पापा काम ही कुछ ऐसा है कि हमारा बॉस हमें सैलरी 4 हिस्सों देता है।
विवेक बेटा, कहीं तू कोई गलत काम तो नहीं कर रहा?
नहीं नहीं पिताजी, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, मैं बहुत काम बाकी है अभी। ठीक है मैं चलता हूँ।
नहीं यार, ज्यादा लोग होंगे तो रिस्क ज्यादा बढ़ जाएगा, अगर पकड़े गए। नहीं नहीं, हम 5 लोग ही काफी हैं।
हाँ हाँ बात तो तेरी सही है, और वैसे भी हर रोज 5 बच्चों को तो हम फंसा ही लेते हैं।
रमेश और विवेक की बातों को सुनकर ऐसा लग रहा था मानो इनके अंदर की सारी मानवता मर चुकी है, भावनाएं दफन हो चुकी हैं, और अपनी मरी हुई भावनाओं और इंसानियत की कब्र पर ये लोग लालच और गुनाहों की चिनाई कर उसे मजबूत बना रहे हैं।
लीजिए पिताजी इस हफ्ते की सैलरी।
अरे बेटा, पर ये तो पिछले हफ्ते की सैलरी से ज्यादा है।
हाँ पिताजी, वो इस हफ्ते का काम भी ज्यादा था ना, बस इसलिए इतने पैसे मिले।
अच्छा अच्छा ठीक है बेटा।
दोस्तों, अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, रोशनी में ठहर ही नहीं सकता। विवेक कब तक अपने पिता से झूठ बोलता, आखिर वो पिता थे उसके। अपने बेटे के झूठ को वो भांप गए, पर उसे एहसास नहीं होने दिया।
मुझे पता है कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, आज मैं विवेक के पीछे जाऊंगा और देखूंगा आखिर काम ये क्या करता है।
पिताजी पिताजी, अरे कहाँ खो गए आप?
हाँ बेटा, कुछ कहा तुमने?
पिताजी मैं जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना।
ठीक है बेटा, कुशल से जाना।
यार विवेक, बड़ी देर कर दी आने में?
कुछ नहीं यार, बस आज ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा था।
सारी बातों से बेखबर रमेश और विवेक की टोली ने बच्चों को पकड़ा, पर तभी अचानक।
विवेक, मैं कहता हूँ बच्चे को वहीं छोड़ दो।
पिताजी, अरे पिताजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
तो ये काम करते हो तुम बेटा? मुझे आज शर्म आ रही है ये सोचकर कि तुम मेरे बेटे हो।
अरे विवेक, अब क्या होगा, तेरे पिताजी कहीं हमें फंसा ना दे। सुन विवेक,
तू जरा यहीं रुक, मैं बात करता हूँ ना।
यार सुन, वैसे भी तेरे पापा की उम्र हो चुकी है, क्यों ना हम उन्हें भी वहीं भेज दें जहाँ सबको भेजा है। वैसे थोड़े पैसे कम मिलेंगे, पर एडजस्ट कर लेंगे। बोल क्या बोलता है
तू? ऐसा कैसे कह सकता है, वो मेरे पिताजी हैं।
अब ज्यादा नाटक मत कर, हमने जिन्हें बेचा था वो भी किसी ना किसी के रिश्तेदार थे।
तुम दोनों चुप हो जाओ। रमेश, तुम्हारे भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या तुम्हारा कलेजा नहीं फटा ऐसा करते हुए? बेरोजगार हो जाने का मतलब ये नहीं कि तुम इस रास्ते पर चल पड़ो। हमें खुद की जरूरत पूरी करने के लिए दूसरों के जीवन को तबाह करने का कोई अधिकार नहीं है बेटा। और तुम विवेक, मैंने तो तुम्हें ये सब कभी सिखाया ही नहीं था। नौकरी तो गई थी बेटा, हिम्मत तो थी, ये दो हाथ और पैर तो थे, फिर से कुछ कर लेते।
विवेक को अपने किए पर बहुत पछतावा था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी।
ये पुलिस कहां से आ गई?
पिताजी, क्या आपने पुलिस को बुलाया?
हाँ बेटे, मैंने ही पुलिस बुलाई है। मुझे पहले ही से शक था कि कुछ तो गलत कर रहे हो तुम लोग। अब जो बोया है उसे काटना भी तो होगा बेटा।
मुझे माफ कर दीजिए पिताजी।
पुलिस रमेश और विवेक को पकड़ कर ले गई। एक पिता ने अपने बेटे की गलती को छिपाया नहीं, बल्कि उसे उसके किए का एहसास कराया और उसे दंड भी दिलाया।
श्रोताओं, ये कहानी हमें बताती है कि अगर आपके पास काम नहीं है, अगर आप बेरोजगार हैं, तो अपने आप पर भरोसा रखिए। माना कि बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई है, लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं, और ये बेहद दुख की बात भी है। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि हालात चाहे कितने भी गंभीर क्यों ना हो, अपनी मानवता को बेचकर घर में पैसे कभी मत लाइए। दोस्तों, अगर आज आपकी नौकरी चली गई है, आप बेरोजगार हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अब आपको काम नहीं मिलेगा। हो सकता है कि सैलरी पहले जैसी ना हो, लेकिन श्रोताओं, कम पैसों से भी गुजारा किया जा सकता है। जी हाँ, अभी वक्त और हालात की यही मांग है कि आप संयम रखें, धैर्य से काम लें, और हमेशा याद रखें कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। और अब हमारा फोन नंबर है 8826224477। जी हाँ, 8826224477। नमस्कार।